नमस्कार भारत, तारीख 26 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। बराक ओबामा के बाद अब पूर्व अमरीकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन के घर भेजी गई विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई।
We are investigating all of this with great precision. I can say with certainty.
भारत में अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर पर ईडी का छापा।
कल दोपहर को 2 बजे के करीब ईडी का छापा शुरू हुआ एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर पे, तो करीब 12 बजे तक उनका छापा चला।
जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में क्या है जनता के मुद्दे।
महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, महिलाओं के घर में महंगाई के कारण सब बजट बिगड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज का भाव बढ़ गया है। अब ऐसी सरकार होना चाहिए जिसमें महंगाई पर रोक लग सके।
होंगी चुनावों से जुड़ी अन्य खबरें भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, नवीन नेगी से। अमेरिका में जाने माने लोगों के घरों के पते पर विस्फोटक सामग्री भेजने के मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं का मानना है कि यह संदिग्ध सामग्री फ्लोरिडा से भेजी हो सकती है। गुरुवार को इसी तरह के 2 और बम प्राप्त किए गए, जिन्हें अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन और अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो के घर के पतों पर भेजा गया था। न्यूयॉर्क में इसके चलते पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। गूगल कंपनी ने अपने 13 वरिष्ठ मैनेजरों सहित कुल 48 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इन सभी पर पिछले 2 सालों के दौरान यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे थे। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई ने अपने कर्मचारियों के नाम जारी किए गए एक पत्र में लिखा है कि उनकी कंपनी दुर्व्यवहार के आरोपों पर कड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल यह पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के जवाब में लिखा गया है, जिसमें बताया गया था कि एंड्रॉयड निर्माता एंडी रूबिन को उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बदले $90 मिलियन का पैकेज देकर विदा किया गया था। क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी सेना ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सीरिया में रूसी एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले को अमरीकी जासूसी विमान के जरिए नियंत्रित किया गया था। उपरक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा है कि पिछली जनवरी को हुए इस हमले में 13 ड्रोन शामिल थे। बीजिंग की अपनी यात्रा के दौरान फोमिन ने कहा कि हमले में शामिल सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया था। अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा,
13 ड्रोन
उस हमले में 13 ड्रोन शामिल थे और उसी समय अमेरिका का विमान पोस्डन 8 भी वहां था। इस विमान के जरिए ही इन ड्रोन को कंट्रोल किया जा रहा था। ये थे रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन के शब्द। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री गैविन विलियमसन ने घोषणा की है कि ब्रिटिश सेना में अब महिलाओं की भर्ती की जाएगी। इसका मतलब होगा कि रॉयल मरीन और स्पेशल एयर सर्विस में पहली बार महिलाओं की भर्ती की जाएगी। विलियमसन ने यह घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि महिलाओं के सेना में आने से सैन्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा। गैविन विलियमसन ने कहा,
It's vital that we actually get to this stage and give everyone in this country the opportunity to join.
यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और देश के हर एक नागरिक को यह मौका मिल रहा है कि वह सैन्य सेवाओं का हिस्सा बन सके। हमने दुनिया भर में देखा है कि किस तरह महिलाएं सेना का हिस्सा बनकर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यही वजह है कि हम महिलाओं को नियुक्ति दे रहे हैं। ये थे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री गैविन विलियमसन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका के विदेश विभाग के अनुसार पत्रकार जमाल खाशोजी के बड़े बेटे सालाह खाशोजी सऊदी अरब छोड़कर अमरीका आ गए हैं। सालाह खाशोजी खुद पर लगे ट्रैवल बैन के चलते अमरीका नहीं जा पा रहे थे। जमाल खाशोजी की मौत इस्तांबुल स्थित सऊदी के वाणिज्य दूतावास में हो गई थी। कई हफ्तों के इनकार के बाद आखिरकार सऊदी ने उनकी मौत की खबर को स्वीकारा था। फ्लोरिडा में आई बाढ़ के कारण कम से कम 18 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इनमें अधिकतर स्कूली छात्र शामिल हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों को खोजने और बचाव का काम लगातार जारी है। इस काम में इजरायली सेना भी मदद पहुंचा रही है। बाढ़ की चपेट में आए करीब 40 स्कूली छात्र और उनके अध्यापक बाहर घूमने गए थे, जब उनकी बस बाढ़ के पानी में बह गई। घाना की पुलिस ने कहा है कि उन्होंने 5 नाइजीरियाई महिलाओं को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। संदिग्ध महिलाओं पर युवा नाइजीरियाई महिलाओं को नौकरी का लालच देकर घाना में तस्करी करने के आरोप लगे हैं। तस्करी कर लाई गई युवा महिलाओं को वेश्यावृत्ति में उतारा जाता था। मेक्सिको की पुलिस को 19 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिन्हें जालिस्को राज्य में दफना दिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग ड्रग्स से जुड़ी हिंसा के शिकार रहे होंगे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमेरिका में जानी मानी राजनीतिक हस्तियों के घर विस्फोटक सामग्री भेजे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पहले पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के घर के पते पर भेजी गई विस्फोटक सामग्री को खुफिया विभाग ने पकड़ा था और अब उसने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन के घर भेजी गई विस्फोटक सामग्री को पकड़ा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए नवीन नेगी से।
अमरीकी खुफिया विभाग इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि देश के जाने माने लोगों के घरों पर विस्फोटक सामग्री कहां से भेजी जा रही है और इसे कौन भेज रहा है। इस बीच गुरुवार को दो और लोगों के घरों पर विस्फोटक सामग्री पाई गई। इन दो लोगों में अमरीका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन और जाने माने अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो शामिल हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत में न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर जेम्स ओ नील ने कहा कि दोषी व्यक्ति ज्यादा दिनों तक बचकर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा,
"We are investigating all of this with great precision. I can say with certainty,
हम तेजी से इस मामले की जांच कर रहे हैं और मैं यह कह सकता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति इस काम में शामिल है हम जल्दी ही उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार करेंगे। न्यूयॉर्क शहर का खुफिया विभाग और चरमपंथ विरोधी एजेंसियां किसी से कम नहीं है। ये थे न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर जेम्स ओ नील के शब्द। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के घरों पर भी विस्फोटक सामग्री भेजी गई थी। साथ ही साथ अमेरिका के जाने माने निवेशक जॉर्ज सोरोस के न्यूयॉर्क स्थित घर पर भी बम भेजा गया था। न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डे ब्लासियो ने कहा है कि शहर में पुलिस बल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा,
Clearly, what we've seen in the last few days is an attack on media outlets.
बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि देश के जाने माने लोगों पर हमले की कोशिशें हो रही हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह मामला हमारे लिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इस तरह के हमलों या धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये थे न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डे ब्लासियो के शब्द। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये संदिग्ध विस्फोटक सामग्री फ्लोरिडा से भेजी हो सकती है। हालांकि एफबीआई ने इस संबंध में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। अमरीकी खुफिया सेवा ने 23 अक्टूबर को हिलेरी क्लिंटन के घर के पते वाला विस्फोटक सामग्री युक्त पैकेट बरामद किया था। उसी दिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के घर के पते पर भेजा गया इसी तरह का दूसरा पैकेट भी मिला था। हालांकि ये दोनों पैकेट पते पर पहुंचने से पहले ही बरामद कर लिए गए थे और इस तरह ओबामा और हिलेरी के घर पर संदिग्ध सामग्री नहीं पहुंच पाई थी।
पूर्व अमरीकी उपराष्ट्रपति के घर भेजी गई विस्फोटक सामग्री, रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। आते हैं भारत, जहां कल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बेंगलुरु में मानवाधिकारों को लेकर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर पर छापे मारे। अब से कुछ दिनों पहले एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्रीन पीस के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई थी। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए मैंने बेंगलुरु में देर रात हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी से बात की।
जी, करीब कल दोपहर को 2 बजे के करीब ईडी का छापा शुरू हुआ एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर पे। उनकी 4 मंजिल की बिल्डिंग है उनकी ऑफिस, और वहाँ करीब उनके उन जब छापा शुरू हुआ तो उन्होंने जो काम वहाँ काम करने वाले रिसर्चर्स हैं और दूसरे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनके पास से उनके लैपटॉप्स ले लिए थे और उनके मोबाइल फोन भी ले लिए थे। तो करीब 12 बजे तक उनका छापा चला।
प्रवर्तन निदेशालय ने इसमें अब तक क्या कहा है?
जी, ईडी का आरोप ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई के नियमों का उल्लंघन किया है। ईडी के बयान के अनुसार जब सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल विदेश से पैसा लाने पर रोक लगाई तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बैंक का खाता खोला और करीब 36 करोड़ रुपये उसमें विदेश से ट्रांसफर किया और इस 36 करोड़ में से करीब 10 करोड़ खर्च के तौर पर लिया गया था। फिर एक और बैंक का खाता खोला एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट के नाम से, जिसमें करीब 14.5 करोड़ रुपयों का ओवरड्राफ्ट लेने की खासियत थी।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या अब तक कोई बयान जारी किया अपनी ओर से?
ये रेट के बाद एमनेस्टी इंडिया ने ट्वीट के जरिए कहा कि उनकी संस्था कानून का पालन करती है। इस रेट से ये जाहिर होता है कि सरकार एक डर का माहौल बनाना चाह रही है उन संस्थानों में जो सरकार से सवाल पूछ रही है।
कुछ समय पहले पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस के दफ्तर पर भी छापे की खबरें थी।
हाँ, अक्टूबर 5 तारीख को ग्रीन पीस इंडिया पे छापे लगे थे। करीब 3 हफ्ते पहले, और ग्रीन पीस का आरोप है कि ईडी के अधिकारियों ने ना कोई उनको वारंट दिखाए या उनको शिकायत की पर्ची दिखाई, मगर करीब 7 घंटों तक उनके दफ्तर पे छापा चला और उसके बाद ईडी ने उनके 12 बैंक अकाउंट पर ताला लगा दिया है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर पर छापे, जानकारी दे रहे थे इमरान कुरैशी। कल भारत प्रशासित कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ों में कम से कम 6 चरमपंथियों और 1 जवान की मौत हो गई। कल 3 जगहों पर सुरक्षा बलों और चरमपंथियों का आमना सामना हुआ और फिर देर रात खोजी अभियान चला। इन मुठभेड़ों का ताज़ा हाल जानने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले श्रीनगर में हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर से संपर्क किया।
देखिए, कल जो है पहली घटना उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के क्रीरी इलाके में हुई, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट था कि वहां पे मिलिटेंट जो चरमपंथी हैं वो छुपे हुए हैं। तो जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस क्रीरी इलाके को पूरा घेरे में लिया और जिसके बाद वहां छुपे जो मिलिटेंट थे लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट जिनको वहां मारने का दावा किया पुलिस ने, और दूसरी मुठभेड़ साउथ कश्मीर जिसको हम दक्षिणी कश्मीर कहते हैं, दक्षिणी कश्मीर के आरवनी इलाके में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, तो वहां पर एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ। 20-25 मिनट में वो पूरा एनकाउंटर खत्म हो गया और जिसमें 4 मिलिटेंट जो है चरमपंथी मारे गए, पुलिस ने दावा किया, पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। और वहां पे फिर स्थानीय लोग जो है, क्योंकि वो एनकाउंटर साइट्स पे यहां पे एक ट्रेंड सा बन गया है कि अब स्थानीय लोग एनकाउंटर साइट्स पे जाते हैं, और वहां पे भी कल लोगों ने कोशिश की कि एनकाउंटर साइट्स पर जाने की, जिसके बाद झड़पें हुई, क्लैश जिसको हम कहते हैं। और तीसरी घटना रात के 9 बजे दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में घटी है, जहां चरमपंथियों ने सेना के कैंप पर हमला किया है और उस हमले में सेना का एक जवान मारा गया है जबकि एक जवान घायल हो गया है।
क्या त्राल वाली घटना में किसी चरमपंथी के मारे जाने की खबर नहीं है, और खोजी अभियान कब तक चला?
पे कल तकरीबन 9 बजे के आसपास उस कैंप पर आरआर का राष्ट्रीय रेफरल्स का ये कैंप था, वहां का जो संतरी था उसको निशाना बनाया चरमपंथियों ने, जिनकी मौत हो गई और एक सैनिक घायल हो गया, लेकिन उस पूरे ऑपरेशन में किसी भी चरमपंथी के मारने की अभी तक कोई खबर नहीं है। और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया सिक्योरिटी फोर्सेज ने मेरे, और बहुत ही देर तक वो सर्च ऑपरेशन चलता रहा और अभी भी वहां पे कई जगहों पे नाके लगाए गए हैं और चरमपंथियों को ढूंढने का जो है अभियान है वो चल रहा है।
अधिक जानकारी दे रहे थे माजिद जहांगीर।
सीबीआई डायरेक्टर को प्राइम मिनिस्टर ने रात के 2 बजे हटाया। 2 बजे ये काम इसलिए किया क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर राफेल मामले पर इंक्वायरी शुरू करने जा रहे थे, क्योंकि अगर सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरे देश को पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को राफेल कॉन्ट्रैक्ट देकर भ्रष्टाचार किया।
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला लगातार तेज हो रहा है। कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गंभीर आरोपों के बाद भाजपा इस पर सफाई देने आई। उसका कहना था कि उसका सीबीआई में कोई दखल नहीं है। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस बचकानी राजनीति कर रही है।
भारत ने इतनी बचकानी राजनीति कभी नहीं देखी, और अब तो वो प्रधानमंत्री जी के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। सभ्यता की सारी मर्यादाएं उन्होंने पार कर दी है। ऐसे व्यक्ति को जनता पूरी तरह से परखती है और इसलिए जनता पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। उनकी, जैसे मैंने कहा, आपा खो बैठे हैं और धीरज गया है, समाप्त हुआ है, इसका ये लक्षण है।
वहीं सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा ने अपने आप को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई कितनी अहम है, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी से बात की।
देखिए, सबकी निगाहें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई के ऊपर है इस समय। सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या करने जा रहा है? उन्होंने तो कहा है कि आलोक वर्मा ने कि ये मेरा हटाना इलीगल है और इनको वापस रिस्टोर किया जाए उसी पोजीशन पे, लेकिन सरकार एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में भी थी कि मतलब आप कैसे इस तरह के घमासान को अलाउ करेंगे सीबीआई के अंदर, और सरकार की छवि भी एक बीटिंग ले रही थी। अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन थी भी तो जो सवाल का कोई जवाब नहीं आया वो ये है कि जो लोग राकेश अस्थाना का को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन करप्शन केसेस में जो कि सीबीआई डायरेक्टर ने इनिशिएट किए थे, और वो अनहैप्पी थे कि जब इनको स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया तो सबको मालूम है, तो उनको सबको क्यों ट्रांसफर किया गया? और वो ट्रांसफर आप कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर जैसी जगह। पोर्ट ब्लेयर का एक कॉनोटेशन है, मतलब पोर्ट ब्लेयर का मतलब काला पानी भेजा जा रहा है उन्हें, इसका क्या सिग्नल जाएगा? तो इन सब चीजों को अब कोर्ट देखेगा।
क्या आपको लगता है कि अगर राफाल चर्चा में आता है तो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और भ्रष्टाचार एक बार फिर से चुनावी मुद्दा बन सकता है?
देखिए, अभी आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार उस तरह से मुद्दा नहीं बन रहा, हालांकि राहुल गांधी चाहेंगे कि वो बॉफर्स की तरह मुद्दा बने राफेल। और जब आप लोगों से बात करिए ना, तो वो सवाल करते हैं, और अगर उनके मन में शक भी आता है, जो कुछ लोगों के मन में आ रहा है, वो कहेंगे सभी एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, उस साइड ने भी ये किया, इस साइड ने भी ये किया, लेकिन मोदी ये कर रहा है। लेकिन ये कैसे बढ़ता है, बहुत चीजें उस चीज पे निर्भर करेंगी, कितना तूल पकड़ता है, जैसे कि मैं कह रही हूँ अगले दिनों में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने आप को जो है चौकीदार कहा है, यानी उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि देश में कुछ भी गलत होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन अगर बात भ्रष्टाचार की या गंभीर अपराधों की हो तो चौकीदार की भूमिका असल में सीबीआई के निदेशक की होती है, और अब वही भूमिका जो है संदेह के घेरे में है आलोक वर्मा, और अब वो सवालों के घेरे में है जो वाकई में असली चौकीदार थे, ये किस तरीके की स्थिति है?
आप जो चौकीदार की बात कर रहे हैं ना, वो तो सीबीआई को पहले कोर्ट ने केज पैरेट कहा था, उस समय के डायरेक्टर ने कहा ये बिल्कुल सच है, और हम सब जानते हैं किस तरह से अब दशकों से सीबीआई के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आता है और जम के आता है, और अगर सीबीआई को एक स्वस्थ एजेंसी की तरह से उभरना है तो ये पॉलिटिकल प्रेशर को तो जूझना ही पड़ेगा, और हर सरकार ये करती है, ये एक सरकार ने की। तो चौकीदार किस अहम तरीके से हो सकता है कि वो प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे हो, ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई मामले पर सुनवाई, अधिक जानकारी दे रही थी नीरजा चौधरी। अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में मेरे साथी नवीन नेगी मेरे सामने बैठे हैं। जी नवीन, बताएं।
शाहिद, आज भी दिल्ली से प्रकाशित होने वाले तमाम समाचार पत्रों में सीबीआई के भीतर जो घमासान मचा हुआ है, जिसकी खबर हम अभी अपने श्रोताओं को सुना भी रहे थे,
लगातार छाया हुआ है।
जी बिल्कुल, तो अखबारों में भी सुर्खियां उसी से बनी हुई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस, वो सभी में पहले पन्ने पर सबसे ऊपर वही खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि सीबीआई में कौन सर्वोपरि होगा, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अखबार लिखता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं आलोक वर्मा, उनको उनकी जिम्मेदारियों से हटाना कानूनन कितना सही कदम है, इस पर आज फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही अखबार ने एक तस्वीर भी प्रकाशित की है जिसमें आलोक वर्मा के घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और ऐसा बताया गया था कि आईबी के जो
कथित तौर पर कहा जा रहा है कि आईबी के कुछ
इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आईबी के कुछ लोग थे वहाँ पे जो जासूसी करने गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स में ही एक और खबर छपी है जो दिल्ली से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें बताया गया है कि मदरसे के एक 8 वर्षीय छात्र को पीट पीट कर मार दिया गया। ये घटना दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की है। शायद खबर के मुताबिक छात्रों के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 8 साल के मोहम्मद अजीम के सिर पर बहुत गहरी चोट लग गई, और अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो वहाँ मृत घोषित कर दिया गया, और पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 4 नाबालिग लड़कों पर हत्या का मामला दर्ज किया है।
और नवीन, इसमें जो पुलिस की एफआईआर है उसमें कथित तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ पीट पीट कर मार देने वाली घटना को लेकर है, और वो बच्चा मेवात का था जो आपका एक बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर।
जी शायद अगर हम इंडियन एक्सप्रेस को उठाएं तो वहाँ पर रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान को प्रकाशित किया अखबार ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश को अगले 10 साल तक एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है, और उन्होंने देश को बाहरी ताकतों से ज़्यादा भीतरी ताकतों से सजग रहने की बात रखी।
यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी एक सरकारी कर्मचारी सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। और अब रुख करते हैं कुछ चुनावी राज्यों का, चुनाव हैं तो मुद्दे भी होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष कई मुद्दे उठा रहा है, लेकिन हमने आम लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उनके लिए इस चुनाव में कौन से मुद्दे मायने रखते हैं। पेश है भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्ता में है, इस बार भी मुकाबला काफी करीबी प्रतीत हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी इस कोशिश में है कि वह एक बार फिर सत्ता में वापस आए। कई तरह के मुद्दे प्रदेश में इस वक्त चल रहे हैं, इनमें से एक और जहां किसानों की समस्याएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध भी मुद्दा हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख मुद्दा है। राजगढ़ के अमिताभ पांडे कहते हैं कि भ्रष्टाचार ने ऐसी हालत पैदा कर दी है कि बगैर पैसों के आम लोगों का काम ही नहीं होता है।
सरकार की योजनाओं को ग्रास रूट पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लोग परेशान हैं और करप्शन के मारे जनता बेदम हुई जा रही है। बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा और अधिकारी जिन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिनके खुलासे मीडिया ने किए, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की अभी भी पदोन्नतियाँ हो रही है, उनको प्रमोशन मिल रहा है और जनता ये देख रही है कि भ्रष्टाचार करने वालों को सरकार संरक्षण देती है।
दूसरी तरफ किसानों की समस्या भी सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन रही है। यह एक ऐसा वर्ग है जो प्रदेश में सत्ता बदलने की ताकत रखता है। बड़ी तादाद में कर्ज के चलते किसानों ने आत्महत्या प्रदेश में की है। इस साल सामान्य से कम बारिश प्रदेश में हुई है, लिहाजा किसान परेशान है। धार के किसान सुरेश मीणा कहते हैं,
सूखी फसल अभी हम बोर है पर क्या पानी नहीं है, अभी बहुत कम पड़ रहा है। खेत में बोर रखे सना भी मर गई, तो इसलिए हमको पानी की समस्या बहुत कम पड़ रही है। पानी नहीं है अभी खेती में, और जो बरसात के हम मौसम में डाले सोयाबीन, वो सोयाबीन में भी कमी पड़ गई। उसका बीज जो खराब निकला, क्या मालूम वो फूल में भी लगने में कम आई, तो ये समस्या आ रही है हमारे गाँव में।
वहीं इस चुनाव में महिलाओं की भी अपनी आवाज है। कोई महिला चाहती है कि महंगाई काबू में रहे, तो कोई चाहता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आए। भोपाल की प्रीति कहती हैं,
महंगाई सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं के घर में। महंगाई के कारण सब बजट बिगड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज का भाव बढ़ गया है। अब ऐसी सरकार होना चाहिए जिसमें महंगाई पर रोक लग सके।
वहीं समीना महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाती हैं।
ये है जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है, वो है कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे हम अपनी खुद की गाड़ी से जाएं या हम कोई कॉमन ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे छेड़छाड़ या कोई भी बदतमीजी का शिकार होने का डर बना रहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे अनसेफ राज्य में आता है जहां पे महिलाएं सेफ नहीं हैं।
प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होने वाला है। इस वक्त प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां हर तबके को अपनी तरफ लाने में लगी हुई हैं। किसानों के साथ ही कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग सरकार से नाराज नजर आ रहा है, लेकिन परिणाम बताएंगे कि इनकी नाराजगी क्या गुल खिलाती है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
श्रोताओं, मुद्दे होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां उसी हिसाब से अपना घोषणा पत्र तैयार करती हैं। एक दूसरे चुनावी राज्य राजस्थान में सत्ता के दावेदार दल अपना घोषणा पत्र तैयार करने में लगे हुए हैं। इसके लिए विभिन्न वर्गों से संपर्क कर उनकी मांगें पूछी जा रही हैं, लेकिन इसमें बचपन कहीं शामिल नहीं है। राज्य में बाल अधिकार अभियान से जुड़ी कई संस्थाओं ने बच्चों का सम्मेलन आयोजित कर उनकी जरूरतें और मांगें पूछी हैं। बच्चों ने कहीं स्कूल कॉपी किताब की मांग की, कहीं खेल के मैदान के लिए कहा। कई छात्राओं ने स्कूल के नजदीक शराब की दुकान हटाने की मांग की। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कोई न छोटा ना कोई बड़ा है, हम सब यहाँ एक हैं। We are the people, we the people, हम सब एक हैं।
कागज की कश्ती, तितली के पंख और चांद सितारों को छूने की हसरत, उनकी आंखों में सतरंगा इंद्रधनुष है, लेकिन जिंदगी का यथार्थ इसकी इजाजत नहीं देता। बच्चों के इस समागम में कोई 200 बच्चे जमा हुए और नेताओं की मौजूदगी में अपनी बात कही। बीकानेर का अजय 11वीं का विद्यार्थी है और पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। यह वो बचपन है जो झुग्गी झोंपड़ी में बसेरा करता है।
हम सभी झोंपड़ियों में रहते हैं, वाकई में 1000 से ज्यादा झोंपड़ियां, हम झोंपड़ियों में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी जैसे लोग वहां पर आते हैं और हमारी झोंपड़ियां तोड़ देते हैं, और फिर उन्हें झोंपड़े बनाने हमारा काफी समय बर्बाद हो जाता है, और फिर हम पढ़ाई कर नहीं पाते हैं और पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं, और वहाँ हमारी लाइट भी नहीं है। हम परीक्षा टेस्टों से जब तैयारी करते हैं पेपरों की, तो हमें रोड लाइट पे पढ़ना पड़ता है, कि वहाँ हमारे पानी भी नहीं है, हम दूर दूर तक जाकर पानी लेके आते हैं।
बच्चों के लिए मांग पत्र तैयार कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद बेनीवाल कहते हैं,
एक आधी आबादी जो देश में राजनीतिक दलों के लिए सीधे तौर पर वोटर नहीं है लेकिन राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय संपत्ति है जिसको हम देश का भविष्य कहते हैं, लेकिन यदि उसके वर्तमान में निवेश नहीं किया गया, वर्तमान अच्छा नहीं बनाया, तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं हमारा भविष्य कैसे होगा। लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी हो, ये बच्चों के अधिकारों में से एक है और इसी को दृष्टिकोण को लेते हुए संभाग स्तर पर बच्चों के साथ कार्यशालाएं की गई हैं, बच्चों से विचार विमर्श किया गया है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी उनकी चुनौती है जो राजनीतिक दलों तक पहुंचनी चाहिए, तो बच्चों की आवाज़ को हम लोग राजनीतिक दलों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
कुछ बालिकाओं ने स्कूल के निकट शराब की दुकानों की शिकायत की। सीकर के एक गाँव की कविता नवीं कक्षा में पढ़ती है, उसने स्कूल में सुविधाओं की मांग की लेकिन कविता का बाल मन इंसानियत को जातियों में बंटा देख कर बहुत दुखी था।
हमें दुख तब होता है जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ना वो जातिवाद करते हैं कि आप लोग तो इस जाति के हो तो आप ना उधर बैठो, हम लोग इस जाति के हैं तो आप उधर बैठो, तो हमें सबसे बड़ा दुख उस चीज़ का होता है कि है तो एक ही देश के पर हम लोगों को ऐसा क्यों किया जाता है, अलग अलग क्यों बिठाया जाता है कि इस जाति के आप उधर बैठो, उस जाति के आप इधर बैठो। सरकार पहले तो वादे कर देती है कि हम लोग आपको ऐसे बोल देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, फिर वो 5 साल सरकार कहीं दिखती ही नहीं है।
इन बच्चों की बातें सुनकर राजनीतिक दलों के नुमाइंदों ने अपने घोषणा पत्र में जगह देने का वादा किया। बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा कहती है,
दुख इस बात का होता है कि आज़ादी के 70 साल हम पार कर चुके और देश के बच्चे ये सवाल आज भी उठा रहे हैं कि पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए, ये बेसिक नीड्स हैं, डॉक्टर्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी को इस बात चिंतन करना चाहिए कि आज भी आज़ाद भारत के इतने साल होने के बावजूद छोटे बच्चों ने आपकी आँख खोलने का काम किया है।
ये चुनावी मौसम है और राजनीति इबादत गाहों की फेरी लगा रही है। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं लेकिन सियासत तो वोटों की गिनती करती है। बच्चे भविष्य तो है मगर अभी वोट नहीं है। नारायण बारेट, BBC जयपुर।
हमने कहा आजाद हैं हम, दिल की सुनेंगे यहां।
चुनावी माहौल और जनता की मांगे। अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अपना शानदार खेल जारी रखा है। हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक की मदद से गत चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चैंपियनशिप के राउंड रॉबिन दौर में अपना अजेय अभियान बरकरार रखा। हरमनप्रीत ने बुधवार देर रात हुए मुकाबले में भारत के लिए 5वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 47वें और 59वें मिनट में 2 और गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। उन्होंने टूर्नामेंट की 3री हैट्रिक लगाई। इससे पहले भारत के दलप्रीत सिंह और पाकिस्तान के अलीम बिलाल ने टूर्नामेंट में हैट्रिक लगाई है। और अब बात कुश्ती की। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और पूजा ढांडा ने बुधवार को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की उम्मीद कायम रखी। भारत की दोनों महिला पहलवान अपने अपने वर्ग के रिप्रीज राउंड में पहुंच गई हैं। इससे पहले रितु मलिक को पिछले साल U23 विश्व खिताब जीतने वाली जापान की आयना गेम्पे से 3-7 से शिकस्त झेलनी पड़ी और वो कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। और जाने से पहले बात फुटबॉल की। भारत ने AFC U19 महिला चैंपियनशिप की क्वालिफायर्स के पहले मैच में बुधवार को पाकिस्तान को 18-0 से करारी शिकस्त दी है। भारतीय टीम हाफ टाइम तक 9-0 से आगे थी। खेल समाचारों में आज इतना ही।
समय हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का। अब से कुछ ही देर में भारत में बजेंगे सुबह के 7, लेकिन उससे पहले चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में जाने माने लोगों के घरों के पते पर विस्फोटक सामग्री भेजने के मामले में जांच कर रहे जांचकर्ताओं का मानना है कि यह संदिग्ध सामग्री फ्लोरिडा से भेजी हो सकती है। गूगल कंपनी ने अपने 13 वरिष्ठ मैनेजरों सहित कुल 48 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इन सभी पर पिछले 2 साल के दौरान यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे थे। अमेरिका के विदेश विभाग के अनुसार पत्रकार जमाल खाशोजी के बड़े बेटे सालाह खाशोजी सऊदी अरब छोड़कर अमेरिका आ गए हैं। सालाह खाशोजी खुद पर लगे ट्रैवल बैन के चलते अमरीका नहीं जा पा रहे थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री गैविन विलियमसन ने घोषणा की है कि ब्रिटिश सेना में अब महिलाओं की भर्ती भी की जाएगी। फ्लोरिडा में आई बाढ़ के कारण कम से कम 18 लोगों के मारे जाने की सूचना है, इनमें अधिकतर स्कूली छात्र शामिल हैं। मैक्सिको की पुलिस को 19 लोगों के शव बरामद हुए हैं जिन्हें जालिस्को राज्य में दफना दिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग ड्रग्स से जुड़ी हिंसा के शिकार रहे होंगे। अधिकारियों ने कहा है कि इन लोगों की हत्या करीब 4 महीने पहले हुई थी। अमेरिका में टीवी कार्यक्रमों से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल अमेरिकी टीवी पर एलजीबीटी समुदाय से जुड़े चरित्रों की संख्या बढ़ गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे रविशंकर कुमार। शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।